शिव बाबा पधारे बोलते
ओम शांति। आप और हम सभी तीन चार दिनों से विशेष अध्यात्म के नए नए विचार सुन रहे हैं। इतने सालों से जो मन में प्रश्न उठ रहे थे, जो संशय आ रहा था, इसका बहुत ही सहज और स्पष्ट रीति से जवाब भी मिल रहा है, संशय भी मिटता जा रहा है। लेकिन और अन्य बहुत सारे प्रश्न होंगे। हाँ, जरूरी है प्रश्न उठना मन में, क्योंकि इस ज्ञान में अगर इच्छुक है तो अवश्य प्रश्न उठेंगे। यह एक सकारात्मक चिंतन है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि नित्य हम अगर इस अध्ययन को करते रहेंगे और भी अन्य प्रश्न संशय हमारे दिल दिमाग से दूर होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह एक विश्वविद्यालय है। प्राइमरी में भी आपका एडमिशन होके दो तीन दिन ही हो गए। इस विश्वविद्यालय में 70 साल से विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अवश्य ही अध्ययन का स्टैंडर्ड या लेवल भी हाई है, लेकिन नित्य अध्ययन करते करते हम 70 साल में जिन्होंने जो पुरुषार्थ किया, अगर निरंतर अभ्यास जारी रखेंगे तो अवश्य ही पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। संशय प्रश्न सब हमारे मन से मिटते जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए हम प्रसन्न चित्त होकर परिस्थिति को स्वीकार करेंगे, पार करेंगे और सफल होंगे जीवन में। इसके लिए मुख्यतः 5 बातें हमें जीवन में धारण करनी है। वो है अध्यात्म के सार, जो आप सभी ने इन 2-4 दिनों में सुन लिया, समझ भी लिया और समा भी लिया। पहले दिन में आप सभी ने सुन लिया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, आना और जाना इन 2 किनारों के बीच में मुझे कैसे जीना है, हर परिस्थिति में मैं कैसे मन का संतुलन बना के रखूं। यह अगर सामने स्पष्ट है मार्ग, तो जीत हासिल करना कोई डिफिकल्टी नहीं है। और इसके लिए चाहिए सोल कॉन्शियसनेस अथवा आत्मस्थिति या स्थित प्रज्ञावस्था। सफल जीवन में बनने के लिए 5 यस जीवन में धारण करने हैं, या दिल में सौगात के रूप में समा कर जाना है। सौगात तो सबने ले लिया, लेकिन वो स्थूल है। कभी याद रहेगा तो डायरी पेन रखेंगे, फोटो देखेंगे, अगर याद नहीं है तो कहां कहां छोड़ के जाएंगे। लेकिन ये 5 यस अगर दिल में सौगात के रूप में समा कर संभाल कर रखेंगे तो सफलता ढूंढना नहीं पड़ेगा संसार में, सफलता आपको ढूंढ कर आएगी। ये सौगात दिल में समा कर संभाल कर रखेंगे। रेडी है? इस सौगात के लिए आपके बैग में जगह नहीं चाहिए, इस सौगात के लिए दिल में जगह चाहिए। समाना भी है और संभालना भी है। अगर एक भी मिस हो जाएगा तो बहुत कुछ आप जीवन में खो लेंगे, इसीलिए बहुत ही संभाल करना जरूरी है। नित्य अटेंशन से चेक करना अति आवश्यक है। तो सफल होना अगर जीवन में चाहते हैं तो 5 यस 5 सौगात है, वह साथ में ले जाना और जिंदगी भर समा कर रखना, संभालते रहना। पहला है यस, जो पहले लेसन का सार है, सोल कॉन्शियसनेस, आत्म अभिमानी स्थिति। अथवा भगवत गीता में बहुत ही सुंदर शब्द का प्रयोग गुरु के रूप में कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को सिखाया समझाया, वो शब्द है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ माना जिसकी प्रज्ञा स्थिर है वो जीवन में सफलता के मार्ग पे पहला कदम, पहली सीढ़ी चढ़ेगा, फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि जीवन में सुख दुख है, लाभ हानि है, जय पराजय है, मान अपमान है, स्तुति निंदा है, दोनों आएंगे आएंगे। मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि केवल वो सुख की चाहना करता है, केवल मनुष्य को सुख चाहिए इसलिए वो दुखी होता है। लेकिन सुख दुख दोनों को संतुलित मन से जब स्वीकार करना सीखेगा मनुष्य, अवश्य ही वो सफलता के मार्ग पर पहला माइलस्टोन अथवा पहली सीढ़ी चढ़ ले। तो ये है पहले लेसन का सार। क्यों? क्योंकि कहा जाता है टीयर्स एंड स्माइल्स मेक द म्यूजिक ऑफ लाइफ। जीवन का संगीत आंसुओं से और स्माइल स्माइल से है, हर्षित मुखता, दोनों चाहिए। एक ही है तो बोर हो जाता है। भले वो सुप्रसिद्ध एक्टर है, संगीतकार है या डांसर है, 24 आवर्स वही करता रहेगा तो बोर होगा या नहीं होगा? बोर होगा नहीं होगा? खीर बहुत पसंद है तो सुबह से रात तक एक महीना खीर ही खिलाते रहेंगे तो बोर होगा या नहीं होगा? बाप रे, मेरे सामने खीर बिल्कुल नहीं लाना कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक लेवल तक, एक सैचुरेशन तक वो अच्छा लगेगा, लेकिन सैचुरेशन क्रॉस करेंगे उससे एलर्जी हो जाएगी, बस प्लीज मेरे सामने नहीं आओ कहें। भले क्यों ना वो उस व्यक्ति से हमें बहुत प्यार है, लेकिन टू मच होगा तो वो प्यार भी जहर बन जाता है। इसीलिए संतुलन चाहिए हर परिस्थिति में, हर पहलू में मनुष्य को। जो बैलेंस करेगा अवश्य ही जीत प्राप्त कर सकेगा। ये है पहले लेसन का सार। स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा। वो सिंपल मेडिटेशन का डेफिनेशन देते हैं, कंडीशन योर माइंड देन यू विल बी कंडीशनड अंडर ऑल कंडीशंस। सिंपल, कंडीशन योर माइंड, पहले अपने मन को कंडीशन में रखो तो यू विल बी कंडीशनड अंडर ऑल कंडीशंस। जीवन के हर परिस्थिति में आप बैलेंस में रहेंगे, संतुलन आपके मन का रहेगा। इसीलिए कोई भी हलचल हो जीवन में, उसका कोई परिणाम प्रभाव दिल दिमाग पर होगा नहीं। ये है पहले सफलता की सीढ़ी। इसके आधार से सेकंड है, वो है सरेंडर इंटेलेक्ट, समर्पित बुद्धि। एक सर्वशक्तिवान के सामने अगर हम हमारी बुद्धि को समर्पण करेंगे तो अवश्य ही हमने दूसरी सीढ़ी सफलता के मार्ग पर चढ़ ली। लेकिन हमारी बुद्धि एक के सामने हम कभी समर्पण नहीं करते। इसको थोड़ा, उसको थोड़ा, उसको थोड़ा हम हमारी बुद्धि को समर्पण करते हैं। इसीलिए बुद्धि योग्य, यथार्थ और निष्पक्ष निर्णय लेने में फेल हो जाती है। गीत सुना होगा आपने, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, तो हमने टुकड़ा टुकड़ा बांट दिया, एक पत्नी को, एक पति को, एक बच्चों को, एक पड़ोसी को, एक माँ बाप को, एक पड़ोसी बॉस को, हजार टुकड़ा करके बांट दिया। इसीलिए दिल कमजोर हो रहा है और हो भी गया है। दिल की बीमारियां आजकल बढ़ते जा रहे हैं कोई ना कोई प्रकार से, लेकिन दिल को दिल वाले बाप के हवाले कर देंगे तो कभी भी दिल कमजोर होगा नहीं। बुद्धि को सर्वशक्तिवान के सामने समर्पण करेंगे तो बुद्धि से जो निर्णय हम लेंगे और उस निर्णय के आधार से जो कर्म हम करेंगे, कभी भी वो कर्म से हमें आंसू बहाना नहीं पड़ेगा, पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा, प्रायश्चित करना नहीं पड़ेगा। इसलिए दूसरी सीढ़ी है सफलता के मार्ग पर, इस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में, वो है सरेंडर इंटेलेक्ट। वो तो वैसे हम हमारे प्रार्थना में, प्रेयर्स में, भजन में करते ही हैं, लेकिन शब्दों के लेवल तक है। कर्म में जब वो आएगा अवश्य ही सफल हम होते रहेंगे। आप सभी को मालूम यह है ही है, हमारे राष्ट्रगान में विशेष हमने भी सीखा और बच्चों को भी सिखाया, जन गण मन अधिनायक जय है। जन गण का नायक नहीं है वो जिसको हम जय है कह रहे हैं, जन गण मन ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह का नायक नहीं है वो, लीडर नहीं है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, इसका लीडर उसका लीडर नहीं, वो है जन गण मन, मन का अधिनायक, सभी के मन का एक ग्रुप जो है, इस एक एक ग्रुप में जो जो लोग है उन सभी के मन का वो लीडर है, अधिनायक, उसको हम कहते हैं जया है। क्यों उसको जया है कहते हैं? उसका जवाब लास्ट लाइन में है। लास्ट लाइन आप सभी को याद है, जन गण मंगल दायक जय है। जन गण का वो मंगल दायक जय है। जन गण का कोई भी धर्म वाला हो, जाति वाला हो, मत वाला हो, पंथ वाला हो, देश वाला हो, भाषा वाला हो, उन सभी का वो मंगलकारी है। इसीलिए हम दिल से उसको कहते हैं जय है, जय है, जय है। भले उसको हमने अपने अपने लैंग्वेज में अलग अलग शब्दों से बुलाया, कोई ने गॉड कहा, कोई ने ईश्वर कहा, कोई ने अल्लाह कहा, कोई ने ओंकार कहा, कोई ने अपने अपने भाषा में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन प्रयोग किया एक परम सत्य के लिए। उसको हम दिल से कहते हैं जय है, जय है, जय है। ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन इसमें और तीन लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। भले वहां राज्य का, नदी का, पहाड़ का वर्णन है, पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा यहाँ है, लेकिन उसमें तीन और लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है तव शुभ नामे, तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। ये वेरी इम्पोर्टेंट, तव शुभ नामे, तेरा शुभ नाम मैं गाता रहूं, कहता रहूं, बार बार मैं याद करता रहूं तेरा शुभ नाम। तव शुभ आशीष मांगे, आशीष मान ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, तेरा मैं आशीर्वाद मांगता रहूं गाहे तव जय गाथा, तेरा जय गाथा यशोगान जय घोष मैं करता रहूं, करता रहूं। मनुष्यों का कितना भी जय घोष करो वो तो टेम्पररी है, वो तो जब चाहिए तब यूज करेंगे, बाद में फेंक देंगे, लेकिन भगवान एक है, परमात्मा एक है, जो हमेशा अपनी शरणागति में आए हुए व्यक्ति का योग क्षेम की जिम्मेवारी जरूर लेगा ही लेगा। उसके लिए कंडीशन कहता है सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, सभी देह के धर्मों को छोड़ मुझे एक को पहचानो और मेरे शरण में आओ, तभी मैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा, सभी पापों के बंधनों से तुमको मैं छुड़ा दूंगा, ये है भगवान की प्रतिज्ञा। अगर हम यही देह के धर्मों में फंसे रहेंगे तो वो हमारे मदद करने नहीं आएगा। अगर हम उसको मदद करेंगे, हम उसके मत पर चलेंगे, हम उसके दर्शाए हुए मार्ग पर कदम रखेंगे तो अवश्य हर पहलू पे, हर कदम पे हमारी रक्षा वो करेगा। मारने वाले हजार होते हुए बचाने वाला हमें राइट टाइम पे बचा ही लेगा, लेगा या नहीं, अवश्य बचाएगा, ये हमारे अंदर से विश्वास होना चाहिए। तो ये है दूसरा यस, सरेंडर इंटेलेक्ट, ये स्ट्रॉन्ग पिलर्स है अध्यात्म के, स्पिरिचुअलिटी के। ये अपनी साधना के लिए है, आत्म उत्थान के लिए है। इसके आधार से हम बाह्य दुनिया में व्यवहार करते हैं तो तीन और यस की जरूरत है, जो आध्यात्म जीवन के या योगी जीवन के सार है। वो है स्माइल ऑन द फेस, तीसरा यस स्माइल ऑन द फेस, प्रसन्न चित्त, हमेशा हंसते हंसते हर परिस्थिति को स्वीकार करो। क्यों? परिस्थिति को स्वीकार करना ही करना है। अपने ही भाग्य दुर्भाग्य अनुसार परिस्थिति सामने है, अपने ही कर्म फल के अनुसार वो खड़ी है हमारे सामने। रोते रोते स्वीकार करो या हंसते हंसते स्वीकार करो, स्वीकार तो करना ही है। तो क्यों ना हंसते हंसते स्वीकार करें? यह सिखाया जाता है अध्यात्म ज्ञान में। क्यों? किसी और का हमारे सामने नहीं आया है, हमारा ही हमारे सामने आया है, हमें ही उसको भोगना है। इसीलिए हंसते हंसते परमात्मा स्मृति में हम अपने कर्म का हिसाब चुकता करेंगे तो अवश्य ही चिल्लाएंगे नहीं जीवन में, हम चलाएंगे हर परिस्थिति में। यह है प्रसन्न चित्त या स्माइल ऑन द फेस। क्यों? क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड कहा जाता है। मन हंस रहा है तो चेहरा हंसेगा, मन रो रहा है तो चेहरा भी रोएगा जरूर। इसलिए यह याद रखना आवश्यक है, रोने वालों के साथ बैठ रोने वाला संसार में कोई नहीं है। अगर हंस रहा है, दूर से देखेगा ये दोनों हंसते बात कर रहे हैं, देख लूंगा, कल तक इनको रुलाऊंगा नहीं तो मेरा नाम सो एंड सो नहीं, यहाँ ही अंदर ही अंदर प्रतिज्ञा करेगा। ऐसे संसार में हम जी रहे हैं, जी क्या रहे हैं, श्वास ले रहे हैं बस, जिंदा के भी लिस्ट में नहीं है, मुर्दे के भी लिस्ट में नहीं है, ऐसा हो गया है हमारा हाल। लेकिन अगर जीना चाहते हैं तो सुख शांति आनंद तृप्ति से जीना अति आवश्यक है, और वो हम प्राप्त करते हैं योग अभ्यास से। ये है तीसरा यस, स्माइल ऑन द फेस। इसके आधार से चौथा है यस, स्वीटनेस ऑन द टंग, शब्दों में मधुरता। जितना शब्दों में मधुरता है उतना ही संबंध हमारे बनते जाएंगे, बिगड़ेंगे नहीं। संबंध जहां हम बनाते जा रहे हैं वहां कोई भी टेंशन नहीं, संबंधों में मधुरता होने के कारण कोई भी प्रकार का विघ्न न व्यक्ति के रूप में है न परिस्थिति के रूप में है। इसीलिए कहा जाता है, एक इंग्लिश में कहावत है, टंग हैज नो बोन्स बट इट कैन ब्रेक बोन्स, जुबान में हड्डी नहीं है लेकिन हड्डियों को तोड़ने का बल जुबान में है। वो हम देखते हैं महाभारत की कहानी में, एक ही शब्द महारानी द्रौपदी ने कहा, अंधों अंधे का औलाद अंधा, अंधस्य पुत्रहा अंधाहा, बस वो शब्द बीज के रूप में काम किया। सिर्फ नुकसान दुर्योधन को नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान द्रौपदी को हुआ, नुकसान हुआ सारे संसार को। क्यों? शब्द एक उसने बोया बीज के रूप में कड़वा, उसका फल सालों साल हजारों को मजबूरी से खाना पड़ा। 14 साल के बाद युद्ध हो गया अवश्य महाभारत का, लेकिन सिर्फ ये दोनों को नुकसान नहीं हुआ, सारा संसार वहां उसका शिकार बन गया। दुखी तो सभी हो गए, मरने वाले तो मर गए युद्ध में। वहां तो उन्होंने दिखाया 18 अक्षौहिणी सेना, लेकिन उनके पीछे उनके बीवी, उनके माँ बाप, बूढ़े, उनके बच्चे सभी तो उसके शिकार बने। इसीलिए बीज एक होता है, फल उसके हजारों निकलते हैं सालों साल। इसीलिए सोचकर अगर बोलेंगे, सोचकर अगर कर्म करेंगे, तो अवश्य ही न हमें दुखी होना पड़ेगा, न दूसरों के साथ हम दुख का लेन देन करेंगे। इसीलिए कहा जाता है, तोल के बोल, तोलो फिर बोलो, तभी संबंध हमारे बनते जाते हैं। तो उसके लिए एक मुख्य स्लोगन हमें याद रखना है, हार मनी के लिए हार मानो। हार मनी अगर चाहते हैं, ये इंग्लिश शब्द है, हिंदी में हार मानो, सॉरी कहो, क्या जाने वाला है, भले गलती उसी की है, लेकिन आप सॉरी कहोगे तो उस समय वातावरण ठंडा तो होगा, शांत तो होगा, बाद में वो अवश्य रियलाइज करेगा, क्यों नहीं करेगा। 14 साल युद्ध के बाद द्रौपदी के सभी प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो गए थे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गए थे, जो उसने चाहा वो सभी सिद्ध हो गया था। वापस उसी सभा में जब आती है, जो जो बैठे थे जिस समय उसका अपमान हुआ था, वो सभी आज निकल गए हैं संसार से, उनका नाम निशान भी नहीं है, वो सभी आसन रिक्त हो गए हैं। फिर भी जब उस सभा में वो आती है, वो विजयी होते हुए भी उसके आंखों में आंसू आते हैं, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसने जो कड़वा बीज बोया था अभिमान से अपमान का, उसका फल सिर्फ उसको नहीं खाना पड़ा, समस्त संसार को खाना पड़ा, उसका रिटर्न में नेचुरली उसको बद्दुआ तो मिले ही मिले। इसीलिए बद्दुआ से हम जीवन में कई बार दुख अशांति का अनुभव करते हैं, सफल होते हुए भी उस सफलता में संतुष्टता नहीं मिलती है। सफलता भी चाहिए, हमें संतुष्टता भी चाहिए, अनेकों की दुआ से हम आगे जीवन में बढ़ते जाएंगे। इसीलिए सफल अगर होना चाहते हैं इस योगी जीवन में, तो चौथा यस स्वीटनेस ऑन द टंग अति आवश्यक है। ये चार के बाद है, लेकिन अति मुख्य है सिंप्लिसिटी इन लाइफ, पांचवा यस जीवन में सादगी। जितना सिंपल है लाइफस्टाइल हमारा, उतने ही विचार हमारे उच्च और श्रेष्ठ होंगे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, विचार हमारे श्रेष्ठ होना चाहिए, ना कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारी जीवन पद्धति अगर हाई लेवल की है, तो गारंटी है वहां किसी का लूट कर, किसी का मार कर, किसी का हम चोरी करके हम अपने लाइफस्टाइल को हाई करेंगे, तो चिंतन का लेवल थर्ड क्लास में थर्ड क्लास है। इसीलिए जहां लाइफस्टाइल सिंपल है, वहां विचार अच्छे हैं। सोचने की बात यह है, जिन्होंने करोड़ों कमाया, उनको उनके बच्चे ही याद नहीं कर रहे हैं, उनको ही मार दिया पैसे के लिए। 10 रुपए बड़े बेटे को ज्यादा देगा तो छोटा उसको पानी देने को भी तैयार नहीं होता। छोटे को अगर 5 रुपया ज्यादा देगा, बड़ा तो उसको देखने भी नहीं जाएगा मरने तक। सत्य यह है, जिन्होंने सब कुछ संसार को दिया, आज संसार उसके सामने झुक रहा है। जो तन दिया, मन दिया, धन दिया, समय दिया, श्वास दिया, संकल्प दिया, चाहते तो वो लोग भी करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम से रख सकते थे, लेकिन संसार को दिया, इसीलिए संसार उसके सामने झुक रहा है, संसार उसके ऋणी है। सिंपल एग्जांपल आप जानते होंगे, मदर थेरेसा का। मदर थेरेसा जब सब जगह इकट्ठा करती थी अपने लेप्रसी पेशेंट्स के हॉस्पिटल चलाने, तभी एक अमीर के घर जाती है, अमीर से पूछती है, मांगती है, भैया मेरे गरीब बीमार लोगों के लिए कुछ मदद करो। तो वो अपने घमंड, अपनी नशा में कहते, तुम कल आ जा। फिर नेक्स्ट डे जाती है, फिर वो कहता है, नेक्स्ट डे आ जा। ऐसे ही एक हफ्ते तक वो नेक्स्ट डे करता रहा। फिर सेवंथ डे जब गई, तब वो थूकता है उसके हाथ में, चल जा निकल जाके। फिर भी उतने ही वो शांति प्रेम से कहती है, ये तो मेरे लिए हो गया भैया, मेरे गरीब बीमार बच्चों के लिए क्या तू देख। एकदम वो अमीरी की नशा उसकी उतर जाती है, उसके पांव पर पड़ता है, मेरे से गलती हो गई माँ मुझे क्षमा करना कहता है। थेरेसा उस दिन मदर थेरेसा बन जाती, क्यों? क्योंकि वो उसमें उसका अपना स्वार्थ नहीं था, सेवा भाव था, इसीलिए वो मदर थेरेसा बने। विश्व ने पहचाना उसकी यह विशेषता को, उसकी इस गुण को, तो अवार्ड दिया, नोबल प्राइज से सम्मान किया। जब नोबल प्राइज करोड़ों का पैसा मिला उसके हाथ में, सर्टिफिकेट मिला, सब कुछ मिला, लेकिन उसने उसमें से एक पैसा अपने लिए खर्चा नहीं किया। हम अब अगर ड्राइंग कंपटीशन में या सिंगिंग कंपटीशन में ये कंसोलेशन प्राइज मिलता है तो उसका फ्रेम लगा के ड्राइंग हॉल में लटका देते हैं। जब वो मर गई, जब उसने शरीर छोड़ा, उसके पास क्या था? दो चार बर्तन थे, दो चार पुराने साड़ियां थे, बाकी कुछ भी उसके पास था नहीं। जब उसने करोड़ों कमाया लेकिन अपने लिए एक पैसा भी नहीं रखा, उसके अपने रक्त संबंधी कोई नहीं थे जब वो मर गई आंसू बहाने, लेकिन सारा संसार उसके लिए आंसू बहाया। ये है जीवन की सफलता। सारा संसार, सारा परिवार उसके लिए रोया। जब जीसस क्रिस्त को क्रूसीफाई किया गया, शूली पर चढ़ाया, उसने उन शिष्यों को पालना दी, उनमें से एक ने ही उसके सभी विचार पोप को दिया और उसको शूली पर चढ़ाया। एक ऑर्डिनरी व्यक्ति होता तो सीधा कहता, अरे तूने मेरे से इतना उपकार लिया, इतना फायदा लिया, और आज मेरे को ये शूली पर चढ़ा रहा है, तेरा सत्यानाश हो, फर्स्ट ग्रेड। सेकंड लेवल में अगर थोड़ा पावरफुल होता, पहले ही पता पड़ता तो एक और एंटी पार्टी खड़ा करके उसका पहले ही सर्वनाश करता। तीसरे लेवल में, चलो भाई मैं अभी तो जा रहा हूँ, ठीक है जाऊंगा, लेकिन लेकिन देख मैं मरने के बाद भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, भूत बनकर तुमको सताता रहूंगा, कहेंगे ये थर्ड ग्रेड के लोग हैं। लेकिन उसने लास्ट मोमेंट में भी क्षमा किया, हे भगवान ये क्या कर रहे हैं समझते नहीं है, इनको क्षमा करो अज्ञानी। ये है हमारी दिल की अमीरी, ये है गुण संपन्नता का एक रिफ्लेक्शन। तो ये शब्द निकलने के लिए अंदर सोच में चाहिए। महात्मा गांधी जी को महात्मा एक दिन में किसी ने नहीं मनाया। लास्ट मोमेंट में मारने वाला पिस्टोल के साथ सामने खड़ा है और व्यक्ति को अनुभव भी हो रहा है कि मैं मर रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, सामने वो है और ये जा रहा हूँ फील कर रहा है, फिर भी अंदर से जुबान से निकला हे राम, हे राम। लास्ट मोमेंट में ऐसी परिस्थिति में निकलने के लिए जिंदगी भर उसने कितने बार हे राम कहा होगा, जिंदगी भर जिसने प्रैक्टिस किया उसी के जुबान से निकलेगा, नहीं तो और क्या निकलेगा। इसीलिए बहुत काल का अभ्यास अति आवश्यक है, उसके लिए बेसिस है सिंपल लाइफ। सिंपल लाइफ स्पिरिचुअलिटी का फाउंडेशन है। ये पांच यस, एक सोल कॉन्शियसनेस, एक सरेंडर इंटेलेक्ट, एक स्माइल ऑन द फेस, एक स्वीटनेस ऑन द टंग, और पांचवा है सिंप्लिसिटी इन लाइफ जीव में साधके। ये पांच यस सौगात के रूप में इस शिबाबा के बेहद घर से आप ले जाएंगे, दिल में समाकर संभाल कर रखेंगे जिंदगी भर, अवश्य ही आप सफल बनेंगे जरूर। यह केवल हम आशा नहीं करते लेकिन विश्वास रखते हैं, लाखों का ये अनुभव है, अवश्य करेंगे यह काम, करेंगे यह काम, समाकर रखेंगे, कोई चोर चोरी करके न जाए, संभालना भी अति आवश्यक। चोर कौन है? माया ही चोर है, हाँ? कभी व्यक्ति के रूप में, कभी वस्तु के रूप में, कभी वैभव के रूप में आएगी, या तो आत्मा अभिमानी स्थिति जाएगी, देह अभिमान में आएंगे,
या तो सरेंडर इंटेलेक्ट चली जाएगी, अरे मैं कमा रहा हूँ खा रहा हूँ आएगा, या तो रोते रोते रहेंगे क्या हुआ ना क्या हुआ ना कैसे हुआ ना, या तो वो लड़ रहा है मैं क्यों नहीं लड़ू सोच के और चिल्लाना चालू करेंगे, या तो चलो क्या सिंपल रहेंगे तो लोग हमको भिखारी समझेंगे थोड़े स्टाइल करें सोचेंगे। ये पांचों फेल्योर के ही लक्षण है, ये आर्टिफिशियल है, बाहर का बबका है, अंदर से खाली। अंदर से जो खाली है ना वही दिखावे में जाता है, जो अंदर से भरपूर हो वो कोई सोचेगा नहीं। कोई क्या सोचे तो क्या हुआ, हम क्या है हम जानते हैं, हम क्या है हम जानते हैं, और हम क्या है वो जानता है, वो जानता है इसीलिए मुझे भी पहचाना उसे, इसीलिए उसने मुझे अपनाया। अभी दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत। और ये पांचों को संभालने का एक ही टेक्निक है, मूल मंत्र है साइलेंस की शक्ति। जितना जितना हम अभ्यास से योग के साइलेंस की शक्ति को जमा करेंगे उतना ही ये पांचों यस हमारे अंदर ही रहेंगे। वो हमें समय पर मदद भी करते रहेंगे और हमें आगे भी बढ़ाते रहेंगे। इसीलिए आप सभी से हम बस एक नम्र निवेदन करते हैं कि ये पांच आपको छोड़कर नहीं जाना, ये हमेशा लक्ष्य रखना और उसके लिए विशेष प्रयास करना और उसको समाकर संभाल कर रखने के लिए मुख्यतः नित्य ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण भी अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ज्योति तो जग गई, उसको जगा कर रखने हमें तेल डालना जरूरी है। एक कहानी सुनाऊं? तो कहानी सुनाऊं? सुनाऊं? एक लकड़ी काटने वाला था। क्यों सुना रही हूं, इसका रेलेवेंट है, वो इसके कनेक्टेड है। एक लकड़ी काटने वाला था लेकिन कहां उसको नौकरी नहीं मिल रही थी। रोज भगवान से प्रार्थना तो करता था कि मुझे नौकरी मिले, नौकरी मिले और मुझे मेरी कला के अनुसार, मेरी विद्या के अनुसार मुझे नौकरी मिले। आखिर एक दिन उसको नौकरी मिल गई। एक लकड़ी काटने वाला फर्नीचर के फैक्ट्री में उसको नौकरी मिल जाती है डेली वेजेस पर। तो जाता है, पहले दिन मंदिर में जाकर नमस्कार करके जाता है, भगवान मुझे शक्ति देना ईमानदारी से सच्चाई से मैं अपना काम संभालूं और मालिक का भी मुझे दुआएं मिले ऐसे मैं सेवा करूं। तो जाता है मालिक से मिलता है, मिलकर लकड़ी काटने का, पेड़ काटने का उसका काम था। तो जाता है, बहुत ही ईमानदारी से मेहनत से लकड़ी काटता है, पेड़ काटता है। उस दिन वो 20 पेड़ काट सकता है। शाम को आकर मालिक के सामने रिपोर्ट देता है, एक पेड़ का इतना पैसा करके 20 पेड़ का उसको पैसा मालिक दे देता है, भगवान तुम्हारा भला करे कह के आशीर्वाद भी करके भेजता है। तो नेक्स्ट डे ये सोचता है 20 पेड़ का मुझे इतना पैसा मिला तो आज मैं और ज्यादा पेड़ काटूं और ज्यादा पैसा ले जाऊं। सोचकर तो घर से निकलता है, मेहनत भी करता है, नेक्स्ट डे सच्चाई से करता है, ईमानदारी से करता है, लेकिन 20 पेड़ क्या 15 पेड़ भी मुश्किल से काट सकता है जिस समय उसको पूरा करना था काम उस समय तक। सोचता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है, फिर भी मालिक के सामने सच्चाई से कहता है, मालिक मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, बहुत ही सच्चाई से ईमानदारी से मैंने मेहनत किया लेकिन 15 पेड़ मैंने मुश्किल से काटा। तो मालिक कहता कोई बात नहीं, कल तुम फिर ट्राई करना, आज 15 पेड़ का पैसा ले लो करके 15 पेड़ का जितना पैसा होता है उतना पैसा देके भेज देता है। जाता है घर, सोचते सोचते सो भी जाता है। नेक्स्ट डे डिसाइड करता है कि आज मैं कल जो कम पेड़ काटा उसका और आज का मिलके थोड़ा ज्यादा ही पेड़ काट लूं, ज्यादा पैसा लेके आऊं। सोच के निकलता है, करता भी है काम, मेहनत से करता है, टाइम भी लगाता है, लेकिन वो 10 पेड़ से ज्यादा काट नहीं सकता है। 15 तो दूर, 10 भी काट नहीं सकता है। वो मेहनत कर रहा है, सच्चाई से ईमानदारी से पसीना बहा रहा है, फिर भी 10 पेड़ से ज्यादा वो काट नहीं सकता है। सोचता है सोचता है, दुखी भी होता है। आकर मालिक के सामने कहता है, मालिक मैं आज बहुत मेहनत किया फिर भी मैं ज्यादा पेड़ काट नहीं सका, 10 ही मुश्किल से मैं काट सका। तो पहले तो उसको कंसोल करता है मालिक, फिर एक प्रश्न पूछता है उससे, देखो तुमने जो लकड़ी काटते ना उसको एक्स को तुमने शार्प किया, नित्य काम शुरू करने से पहले उसको शार्प करके तुमने काम चालू किया, या जैसा पहले दिन तुमने यूज किया वैसे ही तीसरे दिन भी लाकर यूज किया, पूछता है। तो लकड़ी काटने वाला कहता है मैंने उसको शार्प नहीं किया, जैसा था वैसा ही मैं रोज लाता था और पेड़ काटना शुरू करता था। तो कहता है देखो वो शार्प ना होने के कारण तुम मेहनत कर रहा था लेकिन उतनी सफलता तुम्हें मिल नहीं रही थी, इसलिए नित्य एक्स को लकड़ी काटने का उसको शार्प करना जरूरी है। अगर तुम जितना तुम मेहनत कर रहा है उतना सफलता अगर प्राप्त करना चाहता है तो, इसलिए हमें भी नित्य मेहनत तो कर रहे हैं इस संसार में, संघर्षमय संसार में मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। इसका एकमात्र कारण है अपने आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के बजाय, आंतरिक गुणों को बढ़ाने के बजाय इस संघर्षमय संसार में हम हमारे संकल्प श्वास को लगा रहे हैं और क्वेश्चन में खड़े हो रहे हैं कि क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, कब हो रहा है, कब कम हो जाएगा, क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए सोचने की बात यह है संसार में है ही मच्छर, संसार में है ही खटमल और उनका काम ही है काटना। हम एक एक को मारते बैठेंगे तो टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, शक्ति भी हमारी वेस्ट हो जाएगी। उसके बजाय क्या करना है, उसके बजाय हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो या मॉस्किटो कॉइल यूज करो, या तो नेट यूज करो, या तो गुड नाइट यूज करो। एक एक मच्छर को कहां तक मारते बैठेंगे, एक एक समस्या का समाधान कहां तक ढूंढते रहेंगे। जरूरत नहीं है संसार को सुधारना, अपने आप को सुधारना अति आवश्यक है। इसीलिए हम यहाँ विशेष आत्म उन्नति के लिए साधना करते हैं। व्यक्ति व्यक्ति जब परिवर्तन होगा तब विश्व अवश्य ही परिवर्तन हो जाए। तो नित्य व्यक्ति के चिंतन परिवर्तन के लिए यहाँ जो भी आध्यात्म ज्ञान के पिपासु है, जिज्ञासु है और योग अभ्यास में रुचि रखने वाला है, नित्य हमारे सेवा केंद्र में सुबह मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, उसके बाद आध्यात्म के विचारों का चिंतन मंथन करते हैं जरूर, तो हजारों सेवा केंद्र में सारे विश्व में लाखों विद्यार्थी इन महावाक्यों को सुनते हैं और जीवन में परिवर्तन अवश्य अनुभव करते हैं। इन ईश्वरीय महावाक्यों को हम ज्ञान मुरली भी कहते हैं, क्योंकि भागवत में हम सुनते हैं कि मुरली जब कृष्ण ने बजाया तब गोपियां पूरा सुध बुध खो बैठते थे, उसके तान पर नाचते थे। ऐसे ही हम इन महावाक्यों को जब सुनते हैं अवश्य ही मन हमारा नाचेगा, भल शरीर स्थूल है लेकिन मन हमारा नाचेगा। समस्या और संघर्षमय संसार में रहते हुए भी हम नृत्य करेंगे उस ज्ञान के तान के साथ साथ। इनको हम संजीवनी बूटी भी कहते हैं, क्योंकि हम सभी इस भौतिक दुनिया में बेहोश हो गए थे और हमें होश में ले आते हैं ये अनमोल महावाक्य। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या नित्य है, क्या सत्य है, इसको हम पहचानते जाते हैं, इसीलिए इनको हम संजीविनी बूटी भी कहते हैं। और तीसरी ओर हम कहते हैं इनको खजाना, क्योंकि यह ज्ञान रत्नों के खजाने को कोई चोर लूट नहीं सकता, कोई भी डाका डाल नहीं सकता, कुछ भी कोई हमारे भाग्य में जो है ले नहीं सकता। हम जितना इन ज्ञान रत्नों का व्यापार करेंगे, लेन देन करेंगे, उतना ही हमारा खजाना बढ़ता ही जाएगा, वृद्धि को पता ही जाएगा। इसीलिए इस खजाने को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना अति आवश्यक है और ज्ञान रत्न है ये अनमोल महावाक्य। आप सभी ने यज्ञ इतिहास में तथा संस्था के परिचय में सुन लिया कि परंज्योति परमात्मा परकाया प्रवेश करके 1936 से इन महावाक्यों द्वारा ज्ञान के मुख्य विचारों को सुना रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को इस देव जीव जगत के ज्ञान को सुना रहे हैं। 1936 से 69 तक जो भी महावाक्य उच्चारे गए उनको हम कहते हैं साकार महावाक्य। जब 69 में पिताश्री ब्रह्मा बाबा अपने साकार शरीर को त्याग देते हैं तब से दादी हृदय मोहिनी जी द्वारा जो महावाक्य उच्चारे जाते हैं उनको हम कहते हैं अव्यक्त महावाक्य। हर सेवा केंद्र में सोमवार से शनिवार तक साकार महावाक्य तथा विशेष रविवार के दिन अव्यक्त महावाक्य सुनाए जाते हैं। मूलतः साकार महावाक्यों में ज्ञान का खजाना है। अव्यक्त महावाक्यों में हमारे मन हमारी स्थिति को अव्यक्त की ओर ले जाने के लिए, हमारे स्थिति को अव्यक्त बनाने के लिए विशेष एक विचार पर स्पष्ट किए जाते हैं, अन्य अनेक विचार और सुनते 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 इस देह की विकृतियों से, देहजन्य आकर्षणों से, देह की दुनिया के लगाव से हम व्यक्त दुनिया से अव्यक्त की ओर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। इसलिए जो साधक जो ईश्वरीय विद्यार्थी इन व्यक्त अव्यक्त या साकार और अव्यक्त महावाक्यों को सुनता है, समझता है, समाने का विशेष प्रयास करता है अवश्य ही जीवन में आगे ही आगे बढ़ता जाता है, परिवर्तन खुद भी अनुभव करता जाता है, अन्य अनेक भी परिवर्तन का अनुभव करते जाते हैं। इसलिए आप भी वापस यहाँ से अपने अपने सेवा क्षेत्र में जाकर इन महावाक्यों का श्रवण करेंगे, विशेष मन शांति विश्व शांति के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो नेचुरली आत्म शक्ति आत्मविश्वास आत्म बल बढ़ता जाएगा, जीवन में आत्म तृप्ति आत्म आनंद का अनुभव अवश्य करते जाएंगे। अभी हम सुनने के समय विशेष यह ध्यान पर रखना भी आवश्यक है, अगर हम मध्य प्रदेश में जाना चाहते हैं गर्मी के मौसम में हम उलन कपड़े पहन के जाएंगे क्या? नहीं, कॉटन के कपड़े पहन के जाएंगे। अभी हमें हिमाचल प्रदेश में जाना है ठंडी के मौसम में विंटर में तो हम कॉटन के कपड़े लेकर नहीं जाते हैं, वहां हम यूज करेंगे उलन के कपड़े। ऐसे ही साकार वतन में उस परम ज्योति को आना है परम धाम से और साकार मनुष्यों को सुनाना है, समझाना है, परिवर्तन करना है संसार को तो नेचुरली साकार शरीर का ही माध्यम लेगा, आएगा जाएगा तो पता नहीं पड़ेगा। इसीलिए साकार तन द्वारा ही इन महावाक्यों का उच्चारण किया और उस समय वो सभी टाइप किए गए, प्रिंट किए गए और सेवा केंद्र को जाते हैं यहाँ ही हेड ऑफिस मधुबन हेडक्वार्टर से और नित्य उसी डेट की मुरली हर सेवा केंद्र में सुनाए जाते हैं। भले वहाँ सुनाने वाले वहाँ के निमित्त बहने हैं लेकिन सामने परम शिक्षक को रखना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आपके नाम से कोई खत आएगा, आपके नाम से कोई ईमेल आएगा आपके गांव से और वहां से वो लोग मेरे हाथ में देंगे और मैं यहाँ आपका नाम अनाउंस करके आपका पत्र या आपका ईमेल मैं आपको दूंगी और आप खोलकर पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ते पढ़ते कौन याद आएगा आपको? वो पोस्टमैन याद आएगा या वो व्यक्ति जिसने मेरे हाथ में दिया वो याद आएगा या मैं आपके सामने रहूंगी पत्र पढ़ते? कौन रहेंगे? कौन रहेंगे? जिसने पत्र लिखा है वही सामने रहेगा। पत्नी अगर लिखी है तो वो सामने रहेगी, पुत्र ने लिखा है तो पुत्र सामने आएगा, बॉस ने लिखा है तो बॉस आएगा, पड़ोसी ने लिखा है तो पड़ोसी है। जिसने लिखा है पत्र वही सामने आएगा, उसके ही विचार हमारे विचारों को टच करेंगे। ऐसे ही भगवान से आया हुआ ये पत्र पढ़ने के समय, पिता परमात्मा से आया हुआ इस पत्र को पढ़ने के समय अवश्य ही उसको ही सामने रखना अति आवश्यक है। अभी हम सुनेंगे पिता परमात्मा कैसे पालना देता है, परम शिक्षक के रूप में कैसे वो शिक्षा देता है, सद्गुरु के रूप में वो कैसे वरदानों से हमारी झोली भरपूर करता है और सफलता के ओर हमें ले जाता है। सुनेंगे सुनेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ बाप की याद का घृत रोज डालो। मीठे बच्चे, कहने का अधिकार तो पिता को है, कितना भी वो कड़वा हो बच्चा, उसको अवश्य वो मिठाई लगेगा, दुनिया को कड़वा लगेगा, लेकिन पिता को तो वो बच्चा मिठाई लगेगा। लौकिक में फिर भी कड़वा लगेगा बच्चा, लेकिन इस परम पिता को सभी बच्चे मीठे ही लगते हैं। इसीलिए एड्रेस करते हैं मीठे बच्चे, लेकिन शिक्षा दे रहे हैं शिक्षक के रूप में, पिता के रूप में पालना भी दे रहे हैं। अमृत वेले उठ बाप की याद का घृत रोज डालो। कौन कौन डालते हैं? अभी तीन चार दिनों में कौन कौन डाले, बाकी को क्या हो गया? थैंक यू, जिन्होंने डाला उनको धन्यवाद। बाकी जिन्होंने नहीं डाला वो अवश्य ध्यान पर रखना कि अमृत वेले भगवान दिल खोल के हमारी झोली को भरपूर करता है। शक्ति को प्राप्त करने का द्वार अमृत वेले है, और उस समय दरवाजा बंद करके सो जाएंगे हम तो शक्ति कहाँ से आएगी? शक्तिहीन अंदर से होते जाएंगे। इसीलिए आज के दिन इस परिवर्तन भूमि में, परमात्मा अवतरण भूमि में, वरदान भूमि में यह दृढ़ संकल्प करके जाना कि कभी भी अमृत वेले आलस्य के नींद में हम सोएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो संकल्प करेंगे वो अवश्य सिद्ध होगा। तो इस एक कमजोरी को यहाँ दान करके जाना, यह महान तीर्थ है, और यहाँ कुछ न कुछ त्याग करना, दान देना आवश्यक है। इस एक कमजोरी को दान करके जाना। जिन्होंने घृत नहीं डाला तीन चार दिनों में, और जो अच्छा देखा यहाँ उसको साथ में ले जाना, खाली जगह नहीं छोड़ना, साथ में ले जाना। क्यों? क्योंकि यह अमृत वेले में जो साधना करता है साधक, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, अविनाशी फल देने वाला है यह समय की साधना। इसलिए आप सभी से यह एक और रिक्वेस्ट हम करते हैं, बाबा भी आज के दिन विशेष यही बता रहे हैं। तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी, आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी अगर यह घृत डालेंगे तो। और दूसरी बात, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। एक ज्योति अगर जगी हुई है तो एक से एक, एक से एक, एक से एक अवश्य ही जगती रहेगी, दीपमाला हो जाएगी। इसके बाद होता है प्रश्न, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं है? कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं है? कौन सा? बच्चे कहते हैं बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। अभी यहाँ आ गए हैं, सोचेंगे वो भी आते तो कितना अच्छा होता, रोज रोज लड़ाई करने से वो भी सुधर जाता, मैं तो थोड़ा थोड़ा सुधर ही रहा हूँ, शांति होती थी, सोचते हैं। लेकिन बाबा कहते यह धंधा मेरा नहीं है, यह धंधा मेरा नहीं है, यह तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो तुम औरों का भी ताला खोल, स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ, अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। एक संस्कृत में सुभाषित है, आप सभी ने भी सुना होगा अपनी भाषा में। कवि वहां प्रश्न पूछता है, का कहा कृष्ण पिकह कृष्ण को भेदो काक पिकयो हो। काक माना कौवा, कौवा भी काला है, कोयल भी काला है, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, उसका आवाज क्या सारा साल सुनाई देता है क्या? नहीं, तो वसंत ऋतु में सुनाई देता है। वसंत ऋतु आगमने काको का कहा पिको पिका। वसंत ऋतु आ जाता तो कोयल का आवाज सुनाई देता है। ऐसे आप सभी के जीवन में यह संगम युग आ गया है, वसंत ऋतु आ गया है, तो आप सभी कोयल बन गए, क्योंकि कोयल बड़ा कोयल का आवाज सुन लिया और उस बड़े कोयल के आवाज को आपने रिस्पॉन्स दे दिया ना। उसने कहा मीठे बच्चे और आपने कहा सभी ने, या सोच रहे हैं कहना है या नहीं कहना है, ये सिखा रहे तो हम कहे क्या, ऐसा है कहा या नहीं कहा, किसने कहा हाथ उठा, सभी ने कहा, वेरी गुड। उसने कहा मीठे बच्चे मैं आया हूं तुम्हें लेने, तो क्या उसके साथ जाने तैयार हो? कौन कौन तैयार है? सभी तैयार हैं। इधर ही जाने की तैयारी में बिजी हो गए, क्या उधर जाने की तैयारी, उधर जाने तैयार हो? क्योंकि वो तो ले जाएगा, गारंटी दे दिया है उसने कि मैं सुख धाम के तुम्हें मालिक बनाऊंगा, मैं ले जाऊंगा जहाँ सुख है, शांति है, तृप्ति है, आनंद है। तो जाने तैयार होना जरूरी है ना। इसलिए हमें अवश्य ही अन्य मार्ग बहुत मिलते हैं संसार में, इसीलिए हमें पहचानना भी अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कलयुग के भी थे, द्वापर के भी थे, सतयुग के भी थे और त्रेता युग के भी थे। सबके संबंध में हम आए, किसका क्या संस्कार, किसका क्या संस्कार था। लेकिन अभी हमें अपने संस्कार स्वभाव का परिवर्तन करना है और बाप समान संस्कार अपना बनाना है। यह हमें अवश्य यहाँ शिक्षा मिलती है, तो जरूरी यह है। क्यों? क्योंकि कोयल की एक विशेषता यह है कि वो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता। कौवे के घोंसले में अंडे रख के चला जाता, कौवा सोचेगा कि मेरे ही बच्चे हैं, सोच के पालना दे। वसंत ऋतु जब आ जाता है तभी बच्चे निकलते हैं अंडे से और वो बड़े कोयल का आवाज सुनते बच्चे भी आवाज देना शुरू करते। तभी कौवा समझ लेता कि ये मेरे बच्चे नहीं है, धक्का देके नीचे उतार फेंक देता। नीचे गिरते ही वो बच्चा कोयल उड़ना सीख जाता है। ऐसे ही हम भी कलियुगी संस्कार, कलियुगी दुनिया, कलियुगी लोगों के साथ बैठे थे, हम अपने आप को ही पहचाना नहीं था। लेकिन वो बड़ा कोयल आया, आवाज दिया कि तुम मेरे बच्चे हो, कहाँ फंस गए, आ जाओ। उसका आवाज सुनते सुनते हम अगर उसको आवाज देंगे तो अवश्य ही हमारे लिए यह संगम युग है, कल्याणकारी युग है, पुरुषोत्तम युग है, कनिष्ठ पुरुष उत्तम पुरुष बन जाता है। तो हमें भी नित्य उस कोयल के आवाज को सुनना है और उस आवाज में क्या शक्ति भरी हुई है उसको समाने का विशेष प्रयास भी करना है। उसके लिए चाहिए स्वच्छ बुद्धि, पवित्र बुद्धि। इसीलिए दूसरा प्रश्न पूछता है कवि, हंसहा श्वेतहा बकहा श्वेतहा, को भेदो हंस बकयो हो। हंस भी सफेद है, बकुल भी सफेद है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? हाँ, एक क्वालिटी है, दूध और पानी को मिक्स करना सब जानते हैं, लेकिन दूध से पानी निकालने की शक्ति एक हंस में है। और पत्थर या कंकड़ हो मोती से अलग कर सकता है हंस, वैसे ही हम भी भगवान के इन महावाक्यों को सुनते सुनते राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कौन से मार्ग पर चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, कौन से मार्ग पर चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, यह स्पष्ट परख मिलती है और हम जीवन में यथार्थ निर्णय लेकर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बाबा विशेष यह कहते हैं, विचार हमें यह स्पष्ट कर रहे हैं, शिक्षा यह दे रहे हैं कि नित्य अमृत वेले स्वस्मृति में तथा परमात्मा स्मृति में बैठने का प्रयास करेंगे तो आत्म जगेगी, आत्म ज्योति जगेगी और अंधकार जीवन से हटता जाएगा। अंधे भी जो बन गए थे हम काम क्रोध लोभ मोह से, उससे भी हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलने से प्रकाश के ओर हम आगे कदम रखते जाएंगे और उस परम सत्य को यथार्थ रीति पहचानेंगे और शक्तियों से गुणों से अपने आप को सजाकर सतयुग के मालिक हम बन जाएंगे। ये है आज के मुरली का मुख्य सार। तो ये 3-4 पेजेस में उसका पूरा एनालिसिस होता है। लास्ट में कंक्लूड करते हैं, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी थकना, अंडरलाइन करना, इस अभ्यास में कभी थकना व बहाना नहीं देना है। मंजूर है सभी को? मंजूर है? थकना नहीं और बहाना नहीं देना है। याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना है। तेरा तेरे अर्पण, उसको अर्पण करके प्रसाद के रूप में स्वीकार करना है। तो तन भी दुरुस्त, मन भी दुरुस्त, यह है मुख्य धारणा के लिए विचार। और लास्ट में होता है वरदान, क्योंकि सदगुरु है, वरदान भी देता है। रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। क्या भव? मर्सीफुल भव। लड़ते नहीं बैठना, वो बिचारे अपने स्वभाव संस्कार में फंसे हुए हैं, मजबूर है। उस दुखी अशांत आत्माओं को क्षमा करो, हो सके तो आगे बढ़ने में सहयोग दो, नहीं तो खुद आगे बढ़ने का प्रयास करो। रहम की भावना, बदले की भावना नहीं। लॉरी के पीछे लिखा हुआ होता है नहीं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। क्यों बुरी नजर वाले का मुंह काला? चेंज करो ना स्लोगन, बुरी नजर वाले तेरा बोल बाला। कितना परिवर्तन हमारे अंदर, वो परिवर्तन हो ना हो, हम तो परिवर्तन हो जाए। इसीलिए वरदान दे रहे हैं, रहम की भावना को एमर्ज कर अंदर उनके प्रति दया का भाव, क्षमा का भाव। जाने दो, बच्चा है, अज्ञानी है, क्षमा करो। एमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले, इस दुख दर्द की दुनिया में दूसरों को और दुखी नहीं बनाओ और दर्द ना दो किसी को। इंसानियत का व्यवहार करो, इंसान बनकर जीना सीखो, क्षमा करो, आगे बढ़ाओ, खुद आगे बढ़ो। दुआएं दो, दुआएं लो, यहाँ है जीवन की सार्थकता। ये है आज के दिन सद्गुरु के रूप में पिता हमें वरदान दे रहे हैं। और लास्ट में होता है स्लोगन, विशेष उस दिन चिंतन मंथन करने के लिए। ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हो। सिर्फ ज्ञान, भाई हम मुरली सुनते हैं, महावाक्य सुनते हैं, नहीं, लेकिन उसके साथ साथ चाहिए योग का भी पंख। ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हो तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। ज्ञान का भी पंख हो, एक पंख से उड़ नहीं सकते, उसके साथ सपोर्टिंग फैक्टर है योग का। जितना ज्ञान है उतना योग, जितना योग की शक्ति है उतना ही हम ज्ञान में रुचि दिखाएंगे। ज्ञान ही नहीं है तो योग क्या करेंगे? योग का अभ्यास नहीं करेंगे तो ज्ञान में इंटरेस्ट ही नहीं आए। क्या वही सुनाता है, वही बाबा, वही आत्मा, वही परमात्मा, बोर हो जाता है। नहीं, जितना हमें योग के अभ्यास में आगे बढ़ना है उतना ही ज्ञान का भी चिंतन मंथन चलना आवश्यक है। ज्ञान और योग दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। जितना ज्यादा ज्ञान उतना ज्यादा योग, जितना ज्यादा योग उतना ही ज्यादा ज्ञान हमारे जीवन में भरता जाएगा। तो दोनों पंख को अगर मजबूत बनाएंगे तो इस दुनिया से सहज रीति उड़ जाएंगे। नहीं, एक दिन तो उड़ना ही है। रो रो के उड़ने से अच्छा खुशी खुशी से सभी के दुआएं लेते, सभी हमारे पार्ट के लिए कहे वंस मोर वंस मोर वंस मोर, यह आवाज निकले तब हम इस संसार से चले जाए, यह हमें लक्ष्य रखना है। क्योंकि संसार में हम जब आए हमें तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जो हमारे साथ संबंधी थे हमें जबरदस्ती रुलाया, बच्चा जब रोया तब सभी खुश हो गए कि बच्चा जिंदा है। अगर हम ही नहीं रोते तो, हम नहीं रोते तो वो खुद रोते हैं कि बच्चा मर गया कर। उस समय तो पूरा हो गया, जिंदगी भर क्या किया हम ही जानते, रोते रोते काटे या हंसते हंसते, लेकिन अंत हमारा ऐसा श्रेष्ठ हो कि हंसते हंसते हम इस दुनिया से सबकी दुआएं लेके इस कहानी को पूरा करें, इस यात्रा को सफल बनाएं, यह हमें इस जीवन में लक्ष्य रखना है। आप सभी की यात्रा सुखद हो, उस यात्रा भी साथ साथ में इस जीवन यात्रा भी सर्वशक्तिवान हर प्रकार की सफलता दे, सुख दे, यश कीर्ति दे, आयु आरोग्य दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस शिविर के इस अंतिम सत्र को यहाँ ही पूरा करेंगे, लेकिन जाने के पहले आप सभी एक दृढ़ संकल्प करके जाना। करेंगे करेंगे करेंगे। धन्यवाद। सुनाऊं मैं? सुनाऊं? अभी तो आप सभी हमारे बहनों के निमंत्रण से यहाँ तक आए, बहनों ने बहुत मेहनत किया, भाइयों ने जो आपको ले आए यहाँ तक बहुत मेहनत करके बहुत प्यार से 10 बार आपको बोल के भाई आओ बहन जी आओ करके मेहनत करके यहाँ तक ले आए। अवश्य पीछे ईश्वर का निमंत्रण था, लेकिन बहनों ने बहुत मेहनत किया। अभी तो मेहमान बनकर आए, लेकिन पक्का पक्का यह दृढ़ संकल्प करके जाना कि जल्दी से जल्दी हम आएंगे बाप के घर में बच्चे बनकर। अभी मेहमान बनकर आएंगे अधिकार नहीं होता, लेकिन बाप के घर में बच्चे बनकर आएंगे तो अधिकार से आप सर्व खजाने सर्व खुशी सर्व गुण सर्व शक्ति अपना सकते हैं। लेकिन बच्चे बनकर बाप के घर में अगर आप आना चाहते हैं तो एक कंडीशन है वहाँ। सुनाओ कंडीशन, सुनाओ। हाँ, बच्चे बनकर आना है तो माया से बचकर आना है। कंडीशन है माया से बचे रहना, एक कंडीशन बस, माया से बचकर रहना है तो ज्ञान योग के पंख को नित्य मजबूत बनाना बस। आप सभी आए, बहुत बहुत आप सभी ने सहयोग दिया, कार्यक्रम को सफल बनाया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर को भी, पिता परमात्मा को भी, 1 मिनट कितना अर्जेंट क्या है, 1 मिनट उस पिता परमात्मा को भी धन्यवाद करेंगे हम दिल से, क्योंकि उसने हमारा यह भाग्य बनाया और ही हमारी भाग्य की रेखा लंबा खींचने में हमें मदद करेगा अवश्य, तो उसको भी हम दिल से 1 मिनट धन्यवाद करेंगे। सबको फिर से बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
शिव पिता की आ सबके।